برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ کیوں؟ تو اس کی وجہ ہمیں آیت 111 اور 112 میں دکھتی ہے، لن یضروکم الا اذن۔ آج ہم اکثر دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے، اگر وہ تمہارے سامنے لڑنے بھی آ جائیں گے تو پیٹ پھیر جائیں گے اور تمہارے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، وہ تو خود اپنے اون پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان کو تو کسی کی پناہ میں آنا ہی پڑتا ہے، یا پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں یعنی مسلمان ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل کتاب نے جب اپنے دین کو چھپایا اور اپنے دین کو عام نہ کیا تو دُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْکَنَةُ، ان پہ مسکنت بھی آ گئی، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے ناحق، اور انہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 4 سے 5 نکتے ہیں بنی اسرائیل کے ناطے سے کہ وہ کیوں ذلیل ہوئے۔ آج آپ کے میرے لیے اس میں پیغام کیا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی کمزوری اور آج ہمارے زوال کی طرف بڑھنے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے کہ حکومت اپنے طور پہ، یعنی جو حکمران تھے، آپ اگر اس کو خلفائے راشدین سے جوڑ لیجئے، مسلمان حکمران، مسلم رولرز کا جو کردار ہوا کرتا تھا ہسٹری میں، تو آپ کانٹے میں نمک کے برابر لگتا، بلکہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تو ہماری اپنی حکومت کے زیر نگرانی غلط چیزیں پرموٹ ہوتی ہیں، کہیں آرٹ کے نام پہ، کہیں فن کے نام پہ، کہیں ثقافت کے نام پہ، اور معاشرہ بالکل دن بدن گر رہا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ سوشل نارمز، آپ اور میں جو عوام اور رایا ہوتے ہیں، وہ بھی اس کام سے پیچھے ہیں۔ مردوں کو کمانے کا شوق ہے، وہ کیا کریں بیچارے، عورتوں کو گھر سجانے کا شوق ہے، اس کام کا شوق بھی ہے تو وقت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی کسی جگہ ایک غلط کام کو کرتا دیکھے اور اصلاح نہ کرے نا، تو یاد رکھیے پھر اس سے اگلا بڑا کام ہوگا، اگلے بڑے کام کو نہیں روکیں گے تو بڑے بڑے جرائم ہوں گے۔ تو آج آپ کو مجھے اس میں ایک پیکج مل گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت بدلے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بدلیں، تو ہمیں چھوٹے سے کام کو بھی جو کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا ہو برداشت نہیں کرنا، حکمت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ صاف ہو۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتی ہوں، خواتین کو بات گھر سے ہی سمجھ آتی ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے، اور میں بہت بڑی بات نہیں کرتی۔ آپ کے گھر میں صفائی ہوتی ہے، جب اگر آپ کیئر نہ کریں اور تھوڑی ہی دیر بعد بچے جوتے پھیلا دیں، کہیں کھانا گر جائے، کہیں مٹی پڑ گئی اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہی، تو کیا ہوگا؟ ایک دن کے اندر ہی آپ کا سارا گھر خراب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے جی سنڈے کو ماسی نے نہیں آنا، جو برتن گندا ہوگا آپ دھو دیں گے، کوئی چیز بکھری آپ اٹھا دیں گے، کیوں جی آج ماسی نے نہیں آنا، تو کیا آپ کا گھر زیادہ صاف نہیں ہوتا؟ میں نے فیل کیا کہ سیٹرڈے سنڈے کے بیچ میں گھر زیادہ صاف رہتا ہے، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ کیئرفل ہوتے ہیں، اور جہاں آپ برائیوں کو دیکھ کر روک ٹوک چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو صبح کے وقت صفائی اور ستھرائی سے پہلے ہمارے گھروں کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے اس کام میں۔ پھر اس کے بعد آیت 113 سے 115 میں اہل کتاب کے صالحین افراد کی بات ہے، یعنی کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ ماضی کے مسلمان یعنی اہل کتاب تھے یا پھر آج مسلمان، سب برے لوگ نہیں ہوتے۔ عموماً جب دعوات کرنے کے دوران یہ کہا جاتا ہے کہ ہر طرف بگاڑ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صیغہ تغلیب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف دیکھیے، لیس سوا من اہل کتاب، سارے اہل کتاب بھی برے نہیں ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، کیونکہ امتن قائمتن، کچھ بالکل دین پہ قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہم یسجدون، وہ سجدے بھی کرتے ہیں، پھر یومنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی لاتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ جلدی کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں خیرات میں یعنی نیکیوں کے کاموں میں، وہ اولئک من الصالحین، وہ نیک لوگ ہیں، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، تم جو بھی نیکی کرو گے اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین۔ اب سوال یہ کہ اس میں کس کی بات ہے؟ بہت سارے لوگ ان آیات پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کن اہل کتاب کی بات کی ہے، کیا آج کے دور کے اہل کتاب یا نبی کے دور کے؟ اور خاص طور پہ یہ جو صالحین اہل کتاب کی 5 صفات یہاں بیان کی ہیں کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر آخرت پر ایمان لاتے ہیں، پھر نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، फिर सबसे बड़ी बात है युसारिऊन फिल खैरात, के नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलते हैं, तो ये कौन लोग हैं? तो यहाँ ज़रा सा समझिए बात, चूँकि अकीदे की है तो बात करनी लाजिम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के उन चंद अहले किताब की बात है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, जिसमें एक बड़ा मारूफ नाम अब्दुल्ला बिन सलाम का है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के जितने लोग अपने अपने दौर में अपने नबी को मान गए, इंशाल्लाह उनमें से जन्नत में जाएंगे। यानी एक सवाल कुछ कर सकते हैं लोग कि क्या अहले किताब जन्नत में जाएंगे, यहूद जन्नत में जाएंगे, नसारा जाएंगे? तो उसका जवाब आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल जाएंगे। कौन से जाएंगे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले दुनिया से गुजर गए। मसलन हज़रत नूह के साथ जो 60-70 लोग कश्ती में सवार हुए थे, वो जन्नत में जाएंगे। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा तक हर वो शख्स जिसने अपने वक्त के नबी को माना, वो जन्नत में जाएगा। अब नबी सल्लम की आमद के बाद क्या हो गया, इसको समझने की ज़रूरत है। हर नबी ने अपने दौर के लोगों को अपनी किताबों के ज़रिए ये बात कही कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो तुम उनको मानोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर वापस आ गए तो अल्लाह के नबी को मानेंगे। और इसकी एक बहुत प्यारी सी दलील है, कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो अपने पुराने दीन पे नई लोगों को बुलाएंगे, वो दीन मोहम्मदी में बुलाएंगे। तो बात का खुलासा क्या निकला? कुफार की नेकियां कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के नबी को मानना लाजमी है। अगली आयतों में इस पे तज़किरा है, 116-117 में, इन्नल्लज़ीना कफरू लन तुग़नी अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्या। यानी ये कुफार जो खर्च करते हैं, इसकी मिसाल एक तेज़ हवा जैसी है जिसमें पाला था जो जालिमों की खेती पे पड़ा और इसे तहस नहस कर दिया। क्या पता चला कि जब हम अपने इर्द गिर्द कुछ लोगों को बहुत फलाही काम करते देखते हैं, आप देखिए कि आज बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, अब हम कहते हैं कि ये तो जी इतना खर्च करते हैं, गरीबों को देते, जलजला जदगान को देते, सैलाब आ जाता है, और इसी तरह देखे ना इनके मुल्कों में गरीबों को कितना देते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसमें ये बता दिया कि दुनिया में तो उससे फ़ायदा मिलेगा। आज आप देखिए नॉन मुस्लिम मुल्कों में जब आप रहते हैं ना, तो आपको एक चीज़ बहुत महसूस होती है कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के नाम पे अपने मुल्क में रहने वालों को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से उधर चैन है, अमन है। आज हमारे लोग क्यों भाग भाग के बाहर जाते हैं? वो कहते हैं जी वहाँ इंसाफ है, जी वहाँ हक वाले को हक मिलता है। वहाँ जाके लोग बर्तन भी धो लेते हैं। अक्सर लोग जो जाते हैं शुरू में ऐसे बेचारे मुश्किलात में वीज़े ले दे के वेटर्स बनते हैं, उनके कन्वीनियंट स्टोर्स पे जाकर $5-5 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं, यहाँ को बुरा नहीं मनाता कि हम बर्तन धो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई धोता है? यहाँ का मर्द झाड़ू उठा ले, हाँ तो ज़रा देखिए क्या उसका हाल हो। औरतें नहीं उठाती, मर्द कहाँ उठाएंगे? तो क्या पता चला, नॉन मुस्लिम जो अच्छे काम करते हैं रिफाही किस्म के, उसका दुनिया में उनको फ़ायदा होगा, लेकिन आखिरत में क्यों नहीं? ईमान नहीं है। जन्नत मांगी नहीं तो मिले क्यों? अल्लाह पे ईमान नहीं तो अल्लाह ताला उनकी बात का मान क्यों रखे? तो लिहाजा दुनिया में शोहरत भी होगी, दुनिया में फ़ायदा भी होगा, लेकिन आखिरत में ये बात नहीं मिलेगी। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया किसी कॉलेज में और आप उनकी किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या कल आपको डिग्री देंगे या वो आपको पेपर देने की इजाज़त देंगे? फिर इसके बाद आगे देखिए कि आयत नंबर 118-120 का टॉपिक है, अहले किताब से दिली दोस्ती मत रखो। क्यों? इससे तुम्हारे अपने अकायद बदल जाएंगे और तुम उनके रंग में रंगोगे। आप खुद देख लीजिए कि इंसान जिससे गहरी दोस्ती रखता है उसका रंग आता है। तो जो अल्लाह के दुश्मन हों या अल्लाह की बात ना माने, आप जब उनके साथ दोस्ती करेंगे तो क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप देखिए अल्लाह फरमा रहा है, ओ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ु बिताना मिन दूनिकुम। पीछे लफ्ज़ क्या आया था? विलायत, औलिया, यहाँ बिताना। क्या पता चला कि तुम इनसे दिल का ताल्लुक ना रखो। बाकी ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, मामलात हो सकते हैं, एक दूसरे से डीलिंग्स हो सकती हैं, लेन देन हो सकता है, मवासात का ताल्लुक हो सकता है, मुराद के कि उनके गलत नज़रियात तुम्हें अच्छे न लगें, वरना क्या होगा? ला यालूनकुम खबालन वद्दुमानित तुम कद बदद दिल बगदाव मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर। देखिए अगर ये कुरान की आयत ना होती, आपके सामने इसीलिए रखी, अरबी भी पढ़ लीजिए उर्दू भी पढ़ लें, किसी अरबिक डिक्शनरी की रोशनी में देखें, जिसने पैदा किया, जो आपका भी रब, उनका भी रब, वो क्या कह रहा है कि तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कसर नहीं उठा रखते, वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ो। इनकी दुश्मनी तो खुद इनकी जुबानों से भी जाहिर हो चुकी है और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह ज्यादा जानता है आपको मुझे क्या लगे। मेरे आपके लिए इन आयतों पर अमल यह है कि अपने बच्चों को और खुद को ऐसे नज़रियात से, ऐसे फैशन, ऐसे तौर तरीके, ऐसी सेलिब्रेशन से बचाना चाहिए जो गैर मुस्लिम कौमों का शौर हो, वरना आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उसी रंग में रंगते जाएंगे। इसके बाद बड़ा ही अहम हिस्सा शुरू हो रहा है सूरत का और वो है गज़वे उहद पे भरपूर तबसरा। आयत 120 से 180 तक ये बात चलेगी जिसमें हमारे लिए बहुत सारे सीखने के अमल हैं, बल्कि मैं तो इसको अक्सर कहती हूँ कि ये एक ट्रेनिंग सेशन है। मसलन हमें गज़वे उहद से क्या कुछ सबक मिलता है। नंबर एक, लीडरशिप, यानी क़यादत की इताअत में कोताही से जीती हुई जंगों की काया पलट जाती है। गज़वे उहद में मुसलमान जीत चुके थे लेकिन एक छोटी सी बात ऐसी हुई कि जिसकी वजह से जीती हुई जंग जो थी पीछे हो गई और कह लीजिए कि बराबरी पे मामला आ गया। दूसरी बात इससे हमें पता चलती है कि नुसरत इलाही के बगैर फतह मुमकिन नहीं है। जब तक अल्लाह किसी की मदद ना करे उस वक़्त तक उसकी मदद होती नहीं है। फिर तीसरी चीज़ इससे पता चलती है कि मुश्किलात और सख्तियों में वफादारों और बेवफा लोगों में तमीज़ हो जाती है, यानी सहाबाए कराम इतने बावफा थे कि फतह हो या शिकस्त हो, ना उन्होंने अल्लाह के नबी का साथ छोड़ा और ना ही उन्होंने इस्लाम का साथ छोड़ा। फिर इसी तरह इससे एक और बात पता चलती है कि मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही। मतलब क्या है कि कई ऐसी जंगें आईं कि मुसलमानों के पास हथियार भी नहीं होते थे लेकिन वो अल्लाह के नाम पे निकल पड़ते थे। तो ये पूरा किस्सा बैस गदौत मिन अहलिका से शुरू होता है और आगे जाकर आप देखेंगे तो लअल्लकुम तशकुरून पे पूरा होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने नुसरत की बिशारत दी है कि जब तुम निकलोगे तो फ़ायदा होगा। आयत नंबर 124 से 127 में पूरे गज़वे उहद के तनाजर में इस तकूलु लिल मोमिनीन से बात करके फ़यनक़लिबु ख़ाइबीन, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वहाँ सहाबा को जगह दे रहे थे, आपने कैसे तसलियाँ दी, यानी आप कह सकते हैं कि इन आयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक लीडर के तौर पे, एक जरनेल के तौर पे। आप देखिए इतना प्यारा राहबर, राहबरे कामिल एक किताब है, अगर आप उसको भी पढ़ना चाहें तो बहुत प्यारी किताब है। हमने दो दफ़ा उसको पढ़ा है अभी लास्ट 2 ईयर्स में, कोरोना के सालों में। यूट्यूब पे भी मौजूद होगी, नूरुल कुरान टीवी पे आप देखना चाहें तो देखिए कि अल्लाह के नबी का हर रूप ही अछूता था। और मैं चाहती हूँ कि आज के दौर में हम अपने बच्चों को, 10 साल से ऊपर होते हुए बच्चों को नबी सल्लम और सहाबा कराम से जोड़ दीजिए। फितनों की जो बाहर हवाएं हैं, जो गैर मुस्लिम्स की तरफ से इस्लाम पे जो प्रोपेगंडे हैं, अगर आपने अपने बच्चों के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत कूट कूट के भरी होगी, इंशाल्लाह ताला उनके ईमान सलामत रहेंगे। फिर इसी तरह से हिदायत देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला का है। ये मज़मून चलता है 128 129 में कि अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे कह दिया कि उस कौम को कहाँ हिदायत मिलेगी जिन्होंने नबी तक को ज़ख्मी कर दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, लैस लक मिन अल अम्र शैयुन, नहीं, मामले का इख्तियार आपके हाथ में नहीं है। औ यतूबा अलैहिम, मुराद ये है कि वो लोग जो मैदान जंग में तीर तलवार लेके निकल आए, क्या पता कल वो भी इस्लाम पे आ जाएं। इससे आपको मुझे जो बात समझनी है वो क्या है, कभी किसी की हिदायत से मायूस ना हो। कोई बंदा दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिसके पलटने के इम्कानात ना हो। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा भी खोला हुआ है, वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की ज़मीन, अल्लाह का आसमान, यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे बख्शे जिसको चाहे अजाब दे। मुराद ये कि उसको पता है कि मैंने किस मामले को कैसे लेना है। आपको मुझे क्या याद रखना है इसमें, कि अजाब किसी को मिले या उसके गुनाहों की मग़फ़रत हो, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। लेकिन हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, अल्लाह ताला किसी पे ज्यादती नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए, बिगड़े से बिगड़े इंसान को प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत के साथ बुलाते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उनके दिलों को खोल दे। अब गज़वे उहद में जो जीती हुई जंग कह लीजिए कि शिकस्त तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो मदीना पे हमला तो कर ही नहीं सके, वो तो भाग गए, अल्लाह ने मदद की। लेकिन जो जीती हुई जंग बराबर हो गई, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गज़वे बदर में जो खूबसूरत किस्म का मुसलमानों को एक फतह का रंग मिला, उनका रोब दिलों पर डाला गया, वो कम हो गया, तो उसकी वजह माल की मोहब्बत थी। लिहाजा अब अगली आयात में 130-131 में मनी मैटर्स में सबसे सख्त मामला सूद, और उसकी बात करके सूद मुरक्कब यानी मल्टीप्लाइड इंटरेस्ट। एक सूद होता है परसेंटेज के साथ, 1%, 2%, 3%, लेकिन यहाँ क्या कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफ़ा मुदाअफ़ा, दुगने का दुगना यानी मल्टीप्लाइड, बहुत ज़्यादा, इसको सूद मुरक्कब कहते हैं। मुराद ये कि सूद दर सूद इंटरेस्ट की एक शान है कि जब एक दफ़ा बंदा इसमें पाँव एक रखता है ना, तो उसका दूसरा पाँव भी उसमें जाता है, और जब एक इंसान ज़रा सा रिलैक्स होता है तो पता भी नहीं चलता चंद सालों में वो सर के बालों तक कर्जों में डूब चुका होता है। तो सूदखोरी की ममानियत में यह अब दूसरा मुकाम है, पहले हमने तीसरे पारे में पढ़ा और अब इधर आ रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदाफ़ा मुदाफ़ा, बढ़ा चढ़ा कर सूद ना खाओ। तो क्या थोड़ा थोड़ा खा लो? नहीं, जिस चीज़ की ज़्यादा हराम है उसकी कम भी हराम है, क्योंकि ये ऐसा गुना है जो ईमान और तकवा की बुनियादें हिला देता है। इस पे काफ़ी बात हो चुकी, आगे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और साथ ही देखिए ना आयत में 130 में वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून से क्या बता दिया कि दुनिया और आखरत में कामयाबी तकवा के साथ है। जितना कोई इंसान अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उतना उसको ज़रूर कामयाब करेगा। फिर इसी तरह से आयत में आता है वत्तकुन्नारुल्लती उद्दत लिलमुत्तकीन, और इस आग से डरो जो कुफार के लिए तैयार की गई। आयत 131 में क्या पता चला कि सूदखोर के लिए वही अजाब है जो कुफार के लिए है, यानी अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं। आप यहाँ बैठकर दुआ तो कर सकते हैं ना कि अल्लाह ताला ज़ाहरी या बातनी तौर पे कहीं भी अगर मैं किसी सूद के मामले में हूँ तो मुझे उससे निकाल दे। दुआओं से शुरू होता है ये काम, दिल में इस काम की कराहत आ जाए। और आप यकीन करिएगा कि आज बाहर की दुनिया बाल बाल जकड़ी हुई है सूद में, इसी वजह से नेमते तो हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पाते।